का था, रूह वही, रूप नया।
कुएं का राज के भाग तीन में आपने सुना कि नवाब रशीदुज्जमा के सेक्रेटरी का मर्डर हो गया और वो मर्डर एक किताब की तलाश में हुआ, एक ऐसी किताब जिसमें कोठी के और इमारत के सारे राज दफन हैं। आखिर किसने किया ये मर्डर और ऐसे कौन से राज हैं जो मर्डर करने वाला जानना चाहता है? क्या है ऐसा इस इमारत में, जानने के लिए सुनिए भाग चार। सेक्रेटरी की मौत की वजह से सारी कोठी पर एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया था। लोग इस तरह चल फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी के जाग जाने का डर हो। अलबत्ता कभी कभी परवेज के बचकाने कह कहे उस खामोशी को तोड़ दिया करते थे। नवाब साहब दिन भर लाइब्रेरी की किताबें उलटते पलटते रहते, लेकिन गुमशुदा किताब न मिलती। फरीदी की दलील की बिना पर वो मान गए थे कि सेक्रेटरी को जहर देकर मार डाला गया, लेकिन शैतानी मामले वाला ख्याल उनके जहन में ठहरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि शायद भूतों की आड़ लेकर कोई सेक्रेटरी पर हाथ साफ कर गया है। उसकी मौत की वजह से उन्हें परेशानी जरूर थी, एक तो ये कि वो उनके घर का पालक था, और परेशानी की दूसरी वजह ये थी कि पुलिस वाले अब आए गए बेकार में उनका दिमाग चाटेंगे। लाइब्रेरी से वापस आने के बाद फरीदी और हमीद ने अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े बदले। गजाला ने हर बार फरीदी से आराम करने को कहा, लेकिन उसने टाल दिया और उसके साथ पुरानी इमारत के खंडहरों को देखने चला गया। हमीद भी उसके साथ था। लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों वहां रहे, लेकिन कोई खास बात मालूम न हो सकी। वहां से लौटकर वे आग उगलने वाले कुएं की तरफ गए। फरीदी बड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर कुएं की गहराई में देखता रहा, लेकिन दिन के वक्त भी उसमें इतना अंधेरा था कि उसकी तह तक ना दिखाई देती। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है, इसमें पानी तो मालूम नहीं होता? फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। जी हाँ, इसमें पानी नहीं है, गजाला बोली, और उसके अंदर के छाए हुए अंधेरे से ये भी पता नहीं चलता कि ये बहुत गहरा है। उसकी गहराई का अंदाजा तो आज तक कोई भी नहीं लगा सका, गजाला बोली, लेकिन मैंने, हाँ कहिए, रुक क्यों गई, फरीदी ने कहा। कुछ नहीं। लेकिन आपने किसी को इसमें उतरते देखा है? हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ, गजाला डरी हुई आवाज में बोली। आपके जुमले के अंदाज और आपकी घबराहट से मैंने अंदाजा लगाया था कि आपने किसी को उतरते देखा है, लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहती। जी आप ठीक समझे, मुझे खुद अपनी कमजोरी पर बार बार गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूं। तो आप किस वजह से डरती हैं? वो वजह मुझे खुद नहीं मालूम। अजीब बात है, मुझे दरअसल उसकी आंखों से खौफ मालूम होता है। क्यों ये मैं नहीं बता सकती। ओह, तो शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है। तो क्या आपको भी उसकी आंखों से खौफ मालूम होता है? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं कि वो नशे के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल करता है।
नशे के तौर पर सांप का जहर, गजाला हैरत से बोली।
हाँ हाँ, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, चीनियों में तो ये आम रिवाज है।
तो क्या इसी वजह से उसकी आंखें इतनी खौफनाक हैं?
जी हाँ। हाँ तो आपने उसे इस कुएं में उतरते कब देखा? गजाला ने उस रात की सारी कहानी फरीदी को बता दी। आइए वापस चलें, फरीदी लौटने के लिए मुड़ते हुए बोला। उसकी आंखें फिर गहरी सोच का पता दे रही थी। अभी वे कुछ कदम ही गए थे कि परवेज उछलता कूदता हुआ आ गया। उसके एक हाथ में दूध पीने की शीशी और दूसरे में लकड़ी की एक बंदूक थी। फरीदी को देखकर दूध की शीशी उसने जमीन पर फेंक दी और बंदूक तान कर खड़ा हो गया।
बताओ तुमने मेला तोता क्या किया, मेला तोता मंगवा दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
ओह चचा जान, खुदा के लिए आप अपने कमरे से बाहर ना निकला कीजिए, गजाला शर्माते हुए बोली।
तुम क्यों बोलती हो,
गजाला खामोश हो गई। परवेज अभी तक फरीदी के सामने अपनी लकड़ी की बंदूक ताने खड़ा था। हमीद हंसी के मारे बेहाल हो रहा था, लेकिन फरीदी बिल्कुल संजीदा था।
ओह, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपके लिए दूसरा मंगवा दूंगा, फरीदी ने संजीदगी से कहा।
अच्छा, लेकिन वैसा ही हो,
परवेज बंदूक नीची करते हुए बोला। जी ठीक है।
नहीं, वैसा नहीं, हम लाल तोता लेंगे।
जरूर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मंगवा दिया जाएगा। अब आप अंदर चलिए, गजाला परवेज का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली। फरीदी और हमीद अपने अपने कमरों की तरफ गए। रास्ते में तारिक मिला। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कोई खास बात? तारिक बोला।
अभी तक तो खास बात नहीं हुई, लेकिन जल्द ही खास बात पर रोशनी पड़ने वाली है।
मैं आपका मतलब नहीं समझा। उस कुएं के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरीदी ने उसकी बात उड़ाते हुए बीच में से पूछा।
कुआं?
तारिक चौंक कर बोला, लेकिन फिर संभल कर कहने लगा, अब यकीनन ये एक बहुत ही पुराना कुआं है।
मेरा ख्याल है कि इस कुएं में कोई खजाना है,
फरीदी आंख मारकर धीरे से बोला। हो सकता है, तारिक लापरवाही से बोला।
मगर उसमें उतरना यकीनन खतरे से खाली नहीं,
फरीदी ने कहा। तारिक उसे घूर रहा था। अचानक उसकी आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई थी।
ओह, तो आप उसमें उतरने का इरादा रखते हैं?
भाई मैं आपको कभी ये राय नहीं दूंगा।
क्यों? फरीदी ने पूछा। इसलिए कि खुद मैं एक बार ऐसी बेवकूफी कर चुका हूं, तारिक ने कहा और अपने नेवले की पीठ पर हाथ फेरने लगा। अरे भला इसमें बेवकूफी की क्या बात है? फरीदी ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं बताता हूं, एक रात मैंने उस कुएं में उतरने की कोशिश की थी और फरीदी ने उसकी बात काटते हुए कहा। आप तो कहते हैं कि ये शैतानी मामला है, फिर आपके दिल में कुएं में उतरने का ख्याल कैसे आया?
यूं ही,
सिर्फ अपने तजुर्बे में इजाफा करने के लिए।
खैर, हाँ तो फिर आप कह रहे थे कि
हाँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका।
क्यों?
उसमें अनगिनत सांप रहते हैं।
खैर, ये कोई गैर मामूली बात नहीं,
और अजीब बात यह है कि उनके छेद कुएं की दीवारों में हैं।
ओह,
तब तो उन छेदों पर पैर रखकर आसानी से तह तक पहुंचा जा सकता है, फरीदी ने कहा। तारिक इस तरह मुस्कुराया जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे की बेतुकी बात पर मुस्कुराता है।
मैंने आपकी दिलेरी की काफी तारीफ सुनी है, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है।
भाई देखिए, मैं तो आपको कभी भी उस कुएं में उतरने न दूंगा,
हमीद बोला।
अरे आखिर तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हो?
यही तो मैंने कहा
कि आप जैसा समझदार ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है,
तारिक ने कहा।
खैर, देखा जाएगा,
फरीदी ने कहा और आगे बढ़ गया। फरीदी कमरे के दरवाजे पर रुककर सिगार सुलगाने लगा। हमीद अंदर दाखिल हो चुका था। तभी फरीदी को हमीद की चीख सुनाई दी और वो फौरन उसके कमरे में पहुंचा। अंदर पहुंचकर फरीदी ने देखा हमीद सिर से पैर तक खून में नहाया हुआ था।
अरे ये क्या?
फरीदी के मुंह से अचानक निकला। हमीद खामोश था, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बुत बन गया हो। अचानक चीख कर कमरे से बाहर भागा। फरीदी भी उसके पीछे भाग रहा था। कोठी के सारे लोग हमीद और फरीदी को इस हाल में देखकर चीखने लगे। फरीदी ने हमीद को गेट के करीब पकड़ा।
आखिर बताओ क्या बात है, कुछ तो बताओ,
फरीदी ने कहा।
मैं एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकता,
हमीद ने कांपते हुए कहा।
आखिर क्यों? देखिए ये खून की बौछार, तुम्हें चोट तो नहीं आई?
हमीद ने जिसकी सांस फूल रही थी नहीं में सिर हिलाया।
फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सिर पर खून की तेज बौछार।
अबे वाह रे गधे, तो इसमें भागने की क्या जरूरत थी, फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला।
जनाबे आला, मैं डरपोक सही, लेकिन एक जासूस के लिए ये जरूरी नहीं कि वो भूतों से कुश्ती लड़े,
हमीद बोला। अरे तुम बेवकूफ हो अच्छे खासे, फरीदी ने कोठी की तरफ भागते हुए कहा। रास्ते में गजाला मिली, उसने भाग दौड़ की वजह पूछनी चाही।
ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है, जल्दी बताइए,
उसने सीढ़ी की तरफ इशारा किया और फरीदी दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। गजाला भी उसके पीछे दौड़ने लगी।
जरा जल्दी कीजिए, मेरे कमरे की छत। हाँ, अब इधर आइए, वो उधर
इस दीवार के पीछे करीब से शुरू होती है, गजाला हांफती हुई बोली। फरीदी घुटनों के बल बैठकर छत का जायजा लेने लगा। कुछ दूर हटकर शीशे के रोशनदान के करीब उसे खून के छींटे दिखाई दिए। फरीदी बेताबी से खड़ा हाथ मल रहा था।
आखिर बताइए, बात क्या है, गजाला बेचैनी से पूछने लगी।
फरीदी ने थोड़े से शब्दों में उसे सारा वाकया बताया। अफसोस ये कि हमीद की बेवकूफी से वो भूत निकल गया, वरना
क्या मतलब?
जरा ये खून के छींटे देखिए, फरीदी ने रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस शीशे को उठाकर पिचकारी से खून फेंक देना कौन सी बड़ी बात है?
ओह ओह, मैं शुरू से ही इन सब हरकतों में किसी आदमी की हरकत समझ रही थी,
गजाला उसे हैरत से देखते हुए बोली। और वो आदमी? फरीदी ने पूछा।
मैं अपने शक का इजहार आपसे पहले ही कर चुकी हूं,
फरीदी किसी सोच में डूब गया। खैर, देखा जाएगा। दोनों नीचे उतर आए। हमीद अभी तक उसी हालत में लोगों की भीड़ में घिरा हुआ खड़ा था। जाओ, जाकर बाथरूम में कपड़े बदलो, फरीदी ने गुस्से से कहा। हमीद ने कुछ कहना चाहा मगर खामोश रहा। हमीद वाले वाकये के बाद फरीदी अपने कमरे की खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा किसी ख्याल में डूबा हुआ था। उंगलियों में दबा हुआ सिगार न जाने कब का बुझ चुका था। सिगार में लगी हुई राख इस बात का इशारा कर रही थी कि देर से उसने लटके हुए हाथ को हिलाया तक नहीं है, वरना राख जरूर गिर गई होती। वो अचानक चौंक पड़ा। किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा। गजाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने इस वक्त सफेद साड़ी बांध रखी थी। इस सादगी में उसके चेहरे पर और खूबसूरती उभर आई थी। बड़ी बड़ी जादुई आंखें ऐसी लग रही थीं मानो सुबह हो रही हो, और घनी पलकों की छांव में खुशगवार सी शामें रेंगती महसूस हो रही थीं। कुछ चाय वगैरह का होश भी है या नहीं? गजाला की आवाज कमरे की खामोश फिजा में गूंज उठी। उसकी आवाज में न जाने क्या चीज थी जिसने फरीदी की नसों में नशा सा दौड़ा दिया। उसकी आवाज में क्या था? ममता थी, शिकायत थी, तकाजा था, सुपुर्दगी थी, और न जाने क्या क्या। फरीदी अचानक ही मुस्कुरा पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो उन दहकते हुए रुखसारों की आंच में गल गया हो। उसे अपनी हस्ती लहरें लेती हुई झील सरीखी मालूम होने लगी। ऐसी झील जिसमें सुबह की किरणें रंगीन ताने बाने बुन रही हों। तभी फरीदी को खुद में इस बदलाव का एहसास हुआ और उसके जहन ने झपट कर ख्यालों के उस कोने पर काली चादर डाल दी जहां से मोहब्बत की किरणें फूट रही थी। वो अचानक जरूरत से ज्यादा संजीदा हो गया। गजाला ने भी शायद इस बदलाव को महसूस किया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। कहिए तो चाय यहीं भिजवा दूं? अब्बा जान वगैरह आपका इंतजार कर रहे हैं, गजाला ने मुर्दा सी आवाज में कहा। इस वक्त मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। अच्छा, तो फिर यहीं भिजवा देती हूँ, गजाला ने कहा और कुछ देर तक खड़ी उसे देखती रही। फरीदी खिड़की के बाहर देख रहा था। गजाला के चले जाने के बाद उसने उंगलियों में दबा हुआ सिगार बाहर फेंक कर दूसरा सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा।
अब्बा मियां,
किसी ने पीछे से पुकारा। फरीदी पलटकर देखने लगा। दरवाजे में परवेज खड़ा दूध की शीशे मुंह में लगाए दूध पी रहा था।
तुम हमारे अब्बा मियां हो ना,
परवेज फरीदी को अपनी तरफ देख कर बोला। फरीदी उसके इस अचानक सवाल पर बौखला गया लेकिन फिर हंसने लगा।
अब्बा मियां हंसते हैं, अब्बा मियां हंसते हैं।
परवेज दूध की शीशी बगल में दबाकर तालियां बजाता हुआ उछलने कूदने लगा। इतने में हमीद भी आ गया।
और बेटा, चचा जान को भूल गए? उसने धीरे से कहा।
फरीदी उसे घूरने लगा मगर हमीद के चेहरे पर पहले जैसी शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी।
कहिए जनाब, इतनी बूढ़ी औलादें लिए फिरते हैं और फिर फरमाते हैं कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं,
हमीद बोला। आहा, क्या बकते हो, फरीदी ने अपनी हंसी रोककर संजीदा बनने की कोशिश में कहा।
हाँ 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 हाँ,
परवेज उछल कर हंसता हुआ बोला।
अब्बा मियाँ ने चचा जान को डांट दिया। हाँ हाँ, अब्बा मियाँ ने चचा जान को डांट दिया।
हमीद एक कुर्सी पर बैठकर शरारती नजरों से परवेज की तरफ देखने लगा।
हम गोद में बैठेंगे,
परवेज हमीद के करीब आकर ठनक कर बोला।
जी ये है, आप क्या फरमा रहे हैं? जरा अपना भारी भरकम जिस्म तो देखिए।
हमीद हैरान होकर चीखा। परवेज उछल कर उसकी गोद में बैठ गया और हमीद के मुंह से चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रानों पर हड्डियां कड़कड़ा कर टूट गई हों। फरीदी बेअख्तियार हंसने लगा।
अरे जनाबे आला उतरिए भी, वरना मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी,
हमीद कराह कर बोला।
हम ना खलगोच का बच्चा लेंगे,
परवेज हमीद की गोद में मचलता हुआ बोला।
अरे मरा, खरगोश का बच्चा नहीं बल्कि मैं आपको गधे का बच्चा मंगवा दूंगा, अल्लाह मेरी जान तो छोड़िए,
हमीद चीखा।
नहीं नहीं खरगोश का बच्चा, आहा।
परवेज और ज्यादा मचलने लगा।
अरे अल्लाह मेरी जान बचाइए,
हमीद ने फरीदी से कहा।
मैं क्या जानू,
फरीदी ने कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सिगार पीने लगा।
खरगोश का बच्चा, खरगोश का बच्चा, अबे भाग भूतनी के,
हमीद ने झल्लाकर परवेज को ढकेल दिया। परवेज के गिरते ही दूध की शीशी टूट गई और सारा दूध जमीन पर फैल गया। परवेज जमीन पर पड़ा हिचकियां ले लेकर रो रहा था।
अरे ये तुमने क्या किया,
फरीदी ने घबराकर उसे उठाते हुए कहा। इतने में गजाला नौकर के साथ चाय लेकर आ गई।
ये क्या,
परवेज को इस हाल में देखकर वो बोली।
मुझे अफसोस है कि,
फरीदी ने खड़े होकर कहा।
अरे आखिर हुआ क्या,
हमीद को तो आप देख ही रही हैं, बेचारा दुबला पतला आदमी है, परवेज साहब उसकी गोद पर चढ़कर बैठ गए और किसी तरह उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ओह,
गजाला परवेज को जमीन से उठाने के लिए झुकी। उठिए चचा जान, देखिए ये लोग क्या कहेंगे।
नहीं उठेंगे, हमको धकेल दिया, हम नहीं उठेंगे,
परवेज रोता हुआ बोला। उसकी हालत देख कर गजाला की आंखों में आंसू आ गए। फरीदी और हमीद को भी काफी अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से गजाला उसे बहला फुसला कर बाहर ले गई।
तुमने बहुत बुरा किया हमीद,
फरीदी ने हमीद से कहा।
अरे तो क्या अपनी हड्डियां तोड़वा लेता,
हमीद ने कहा और चाय पीने लगा। उसी रात की बात है, फरीदी, हमीद, गजाला, तारिक और नवाब साहब बरामदे में बैठे कुएं की चिंगारियां निकलने का इंतजार कर रहे थे। गजाला की आंखें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी।
भाई 11 तो बज गए,
नवाब साहब ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा।
मुजरिम अब आज तीसरी बार बेवकूफी नहीं करेगा,
फरीदी मुस्कुरा कर बोला।
तो क्या तुम्हें ये पूरा यकीन है कि ये काम किसी आदमी का है,
नवाब साहब ने पूछा। 100%, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगाने लगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक एक तेज किस्म की सरसराहट की आवाज सुनाई दी।
ये लो, आवाजें शुरू हो गईं।
ओह, फरीदी के मुंह से अचानक निकला और वो सीधा होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली। जानवरों की आवाजों से कोठी गूंज रही थी। फरीदी उठकर अंदर चला गया। वो कई कमरों में घूम घूम कर आवाजें सुनता रहा। फिर वो बरामदे में लौट कर आया। यहां भी ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे आवाजें दीवार के एक हिस्से से निकल कर आ रही हूं। आवाजों का सारा सिलसिला खत्म होते ही उसने फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। ओह, उसके मुंह से दोबारा निकला और फिर वो गहरी सोच में डूब गया।
सीढ़ी, बांस की सीढ़ी,
वो अचानक चीखा।
क्या मतलब,
नवाब साहब चौंक पड़े।
एक सीढ़ी तो मंगवाइए,
फरीदी ने कहा और बुझे हुए सिगार को सुलगा कर बेताबी से बरामदे में टहलने लगा। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई थी।
हमीद ये अच्छी तरह जानता था कि ऐसे मौके पर उसकी ऐसी हालत हुआ करती है जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका शिकार उसके फंदे में आ गया है।
खुदा खैर करे, कुछ होने ही वाला है,
हमीद ने धीरे से कहा।
क्या,
गजाला जो करीब ही खड़ी थी चौंक कर बोली।
कोई नई बात होने वाली है,
मैं आपका मतलब नहीं समझी, अभी समझ में आ जाएगा।
इतने में दो नौकर सीढ़ी लेकर आ गए।
अरे ये तो बहुत छोटी है,
फरीदी ने कहा।
ओके ठीक है, कोई परवाह नहीं, जरा वो मेज इधर इधर घसीट कर दीवार पर तो लगा दीजिए और सीढ़ी उस पर रख कर दीवार से टिकाइए।
उसके कहने के मुताबिक सीढ़ी लगा दी गई। एक बात, फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला, क्या इन आवाजों से पहले हमेशा इसी किस्म की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है?
इसी बिना पर तो मैंने कहा कि अब जानवरों की आवाजें शुरू होने वाली हैं।
फरीदी सिर हिलाता हुआ सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वो थोड़ी देर इधर उधर दीवार को उंगलियों से खटखटाता रहा, फिर अचानक उसका कहकहा सुनकर लोग चौंक पड़े।
अरे क्या बात है भाई,
नवाब साहब ने डरी हुई आवाज में कहा। कोई खास बात नहीं, लेकिन दिलचस्प जरूर है।
अरे कुछ बताओ भी।
क्या बता सकते हैं कि ये दीवार किस चीज की बनी हुई है? फरीदी ने कहा।
अरे क्या बच्चों जैसा सवाल करते हो लाहौल बिलाखुवत,
नवाब साहब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले। नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बहुत जरूरी है, फरीदी ने पूछा।
अरे भाई पत्थर की और किस चीज की?
क्या पूरी?
अरे लाहौल बिलाखुवत,
नवाब साहब जाने के लिए मुड़े। जरा ठहरिए, मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, फरीदी ने दीवार के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या यहाँ भी पत्थर ही है?
हाँ भाई,
नवाब साहब ने कहा, लेकिन उनकी आवाज से पता चल रहा था कि उन्होंने ये जवाब यूं ही दे दिया है। जरा देखिए ये पत्थर कितना लचकदार है, फरीदी ने उस हिस्से को हाथ से दबाते हुए कहा।
अरे ये क्या?
नवाब साहब हैरान होकर चीखे। फरीदी हंसने लगा।
अरे भाई बताओ ये क्या मामला है, मेरा तो दम घुट रहा है।
तो सुनिए जनाब, अभी तक आप लोग एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड सुनते रहे हैं। यहाँ इस जगह पर लाउडस्पीकर का हॉर्न लगा हुआ है।
अरे,
नवाब साहब उछल पड़े। और तारीफ करता हूँ आर्टिस्ट की जिसने इस जाली को ऐसे रंग से रंगा है कि पत्थरों से मिला दिया है। भाई वाह, फरीदी मुस्कुरा कर बोला।
आखिर ये सब क्या तमाशा है, क्या लगा रखा है?
नवाब साहब अपना माथा रगड़ते हुए बोले। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
अरे मैं क्या बताऊं?
ताज्जुब की बात है, क्या आप इस मकान के मालिक हैं और इस बात का जवाब तक नहीं दे सकते?
खुदा गवाह है कि मैं कुछ नहीं जानता।
भला इस बात पर किसे यकीन आएगा? फरीदी ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा। अंदर भी कई जगहों पर ऐसे ही हॉर्न्स फिट हैं।
अरे होंगे भाई, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म। चलो भाई हमीद, सामान वगैरह पैक करो, इसी वक्त चलेंगे, 1 बजे वाली ट्रेन मिल ही जाएगी।
मगर
नवाब साहब रुक रुक कर बोले।
काम कहां खत्म, हम लोगों की जिंदगी खतरे में मालूम होती है।
हाँ पर भला इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम ये मेरे बस का तो नहीं, फरीदी ने जवाब दिया। आखिर आप इस तरह क्यों जा रहे हैं, इतनी कामयाबी तो आपने ही हासिल कर ली है ना, तो इसका पता लगाना कोई मामूली बात तो थी नहीं, गजाला ने आगे बढ़कर कहा। खैर इसका पता तो आप लोगों को भी था।
तुम न जाने क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूं?
तारिक साहब आप खुद फैसला कीजिए, फरीदी ने कहा। इस बात पर किसे यकीन आएगा कि इस तरह की दीवारों में लाउडस्पीकर फिट कर देना कोई घड़ी दो घड़ी का काम है नहीं ना, जाहिर है कि उसमें वक्त तो लगा ही होगा। फिर मैं ये कैसे समझ लूं कि इस घर में रहने वालों को इसकी खबर ना हुई? मान लीजिए कि ये हरकत घर के किसी आदमी की है, तो ऐसी हालत में भी हर किसी को मालूम होना चाहिए था, क्या ख्याल है? साहब मैं तो अब इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, तारिक ने जवाब दिया।
जाली लाउडस्पीकर,
नवाब साहब खुद ब खुद बड़बड़ाए, शायद आपको यकीन नहीं आया। फरीदी ने पतलून की जेब से बड़ा सा चाकू निकालकर हमीद को देते हुए कहा। जाओ भाई जरा चढ़कर इस मामले को साफ तो कर दो। हमीद चाकू लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सारी जाली कट गई, लाउडस्पीकर का हॉर्न साफ दिखाई देने लगा। ऐसे ही और भी बहुत से लाउडस्पीकर यहाँ की दीवारों में लगे हुए हैं, फरीदी बोला।
अरे तो मैं क्या करूं,
नवाब साहब बेबसी से बोले। उनके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई थीं। इस इमारत के कमरों में सफेदी कब से नहीं हुई, फरीदी ने पूछा।
पिछले साल हुई थी,
नवाब साहब बोले। तो फिर ये काम उसके बाद ही हुआ है, वरना सफेदी करने वालों को
ये बात जरूर पता चलती।
उफ, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
नवाब साहब अपना चेहरा रुमाल से साफ करते हुए बोले,
तो ये सब काम उस वक्त हुआ जब मैं गजाला के साथ 6 महीने के लिए बाहर गया था।
उस वक्त शायद लाउड स्पीकर के हॉर्न फिट किए गए थे, क्योंकि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। एक रात में भी हो सकता है, लेकिन इन दीवारों में तार दौड़ाने का इंतजाम उसी वक्त कर लिया गया होगा जब ये इमारत बन रही थी। नवाब साहब हैरत से फरीदी को देख रहे थे। ये इमारत किसकी निगरानी में तैयार हुई थी? अचानक फरीदी ने पूछा।
मेरे मरहूम प्राइवेट सेक्रेटरी की निगरानी में। मैं उस समय परमानेंट तौर पर लखनऊ में था।
तो ये वजह है हजरत की मौत की, फरीदी बोला।
क्या मतलब?
यकीनन वे उस आदमी से मिले हुए थे जो आपको तंग कर रहा है, और आखिरकार उसने उन्हें अपने रास्ते से हटा ही दिया।
पर वो कौन हो सकता है?
आपका कोई दुश्मन? नवाब साहब सोच में पड़ गए।
मगर मेरा कोई दुश्मन इतना अक्लमंद नहीं है,
नवाब साहब ने जवाब दिया। खैर भाई हमीद, चलो चलकर सामान इकट्ठा करो, फरीदी हमीद की तरफ मुड़कर बोला।
आप हमें इस हाल में हरगिज छोड़कर नहीं जा सकते,
गजाला ने आगे बढ़कर कहा। हाँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ,
ये सब मैं कुछ नहीं जानती, आपको ठहरना पड़ेगा।
और अब आप इसका पता तो लगा ही सकते हैं कि इस हॉर्न का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है, तारिक बोला।
हाँ, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ पूरी इमारत खुदवानी पड़ेगी,
फरीदी ने ताना मारते हुए कहा।
ठीक है, कुछ भी सही, लेकिन आप यहां से नहीं जा सकते, चलिए अब चलकर आराम कीजिए,
गजाला बोली। अंधेरी रात थी, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, गरज और चमक से मालूम हो रहा था कि अभी बारिश होने वाली है। फरीदी ने अपना पलंग बरामदे में निकलवा लिया था, उस वक्त सर्दी बढ़ जाने की वजह से उसने चादर ओढ़ ली थी। सोते वक्त उसने बरामदे की बिजली बुझवा दी थी। सारी कोठी पर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक तरफ अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। वो धीरे धीरे फरीदी के पलंग की तरफ बढ़ रहा था। वो पलंग के करीब पहुंचकर रुक गया। उसका एक हाथ ऊपर उठा और बड़ा सा खंजर सोने वाले के जिस्म में घुस गया। साथ ही किसी तरफ से एक दूसरा साया झपट कर पहले साये पर आ गिरा। दोनों गुंथ गए। इस टकराव में दोनों के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल जाती थीं। तभी एक साया दूसरे की पकड़ से निकलकर भागा, दूसरा साया उसके पीछे भागा, और अंधेरे ने दोनों को अपने दामन में छुपा लिया। शोर सुनकर लोग जाग उठे, कमरों और बरामदों के बल्ब जला दिए गए। हमीद भी जाग उठा। वो भागकर फरीदी के कमरे की तरफ आया। उसे मालूम था कि फरीदी बरामदे में ही सोया है। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसके मुंह से चीख निकल गई। फरीदी ने माथे तक चादर ओढ़ रखी थी और उसके काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। सीने पर एक खंजर जिसका सिर्फ हत्था नजर आ रहा था। हमीद बेतहाशा चीखने लगा,
दौड़ो दौड़ो, कत्ल कत्ल।
नींद से चौंके हुए लोग, जो मामले को अच्छी तरह समझ भी ना पाए थे, उस बरामदे की तरफ दौड़े। इनमें से एक ने बरामदे का बल्ब जलाया।
क्या हुआ? अरे ये क्या?
गजाला आगे बढ़कर बोली।
फरीदी साहब, उफ मेरे खुदा, ये क्या हुआ? अब्बा जान, अब्बा जान।
ओह, शायद सो रहे हैं, किसी ने कहा।
जाओ, जाकर जगा दो। उफ मेरे खुदा, मैंने उन्हें क्यों रोक लिया था?
गजाला सिसकियां लेकर रोने लगी। इस दौरान बारिश होने लगी थी और इतनी तेज हो रही थी कि कान पड़ी आवाज तक ना सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने कहकहा लगाया, सब लोग चौंक पड़े। फरीदी पानी में सराबोर लड़खड़ाता हुआ बरामदे में दाखिल हुआ।
अरे बाप रे,
सबके मुंह से एक साथ निकला,
या अल्लाह तेरा शुक्र है,
गजाला अपने आप बोल उठी। उसकी आंखों से अभी तक आंसू निकल रहे थे।
अरे आप रो क्यों रही हैं? फरीदी ने हंसकर कहा।
पहले ये बताइए कि ये कौन है,
हमीदी ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। अरे चादर उलट कर देखो। जैसे ही हमीद ने चादर उल्टी, उसके मुंह से चीख निकल गई। चादर के नीचे 3-4 तकिए रखे हुए थे और सिरहाने तकिए पर दफ्ती का बना हुआ एक सर रखा था। सिर पर काले रंग के बड़े बड़े बाल चिपके हुए थे। मुझे पहले ही से मालूम था कि आज रात को मुझ पर हमला जरूर होगा।
अरे इसीलिए तो मैं यहाँ से चला जाना चाहता था,
लेकिन गजाला खानम की जिद के आगे एक न चली और मजबूरन मुझे ये इंतजाम करना पड़ा।
मुझे बहुत शर्मिंदगी है,
इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मैं आज चला गया होता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस होता।
हुजूर अपने कमरे में नहीं है,
उस नौकर ने लौट कर कहा जो नवाब साहब को बुलाने के लिए गया था।
क्या कहा, कमरे में नहीं है?
गजाला ने हैरत से पूछा।
कौन?
फरीदी ने पूछा।
अब्बा जान,
गजाला परेशान होकर बोली। ओह, फरीदी तेजी से नवाब साहब के कमरे की तरफ रवाना हो गया। लोग उसके पीछे थे। नवाब साहब का कमरा खाली था। बिस्तर पर सलवटें बता रही थीं कि उस पर कोई सोया जरूर है। कोठी का कोना कोना छान डाला गया। नवाब साहब का कहीं पता न चला। गजाला बुरी तरह परेशान थी। फरीदी सोच में डूबा हुआ था। तारिक धीरे धीरे हमीद से बातें कर रहा था।
तो आखिर इसमें परेशानी की कौन सी बात है?
जाइए, आप लोग जाकर आराम कीजिए। नवाब साहब जहां गए होंगे वापस आ जाएंगे, फरीदी ने कहा।
आखिर इस वक्त कहां गए होंगे?
गजाला बेचैनी से बोली।
हो सकता है रोजाना वे इस वक्त कहीं जाते हों।
आप उनके पीछे पीछे तो नहीं घूमती है ना? फरीदी ने कहा।
अरे, ये आपके माथे से खून कैसा निकल रहा है?
गजाला फरीदी की तरफ देखकर बोली।
अरे, भाग दौड़ में कहीं चोट लग गई होगी, फरीदी ने लापरवाही से कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो कमबख्त बचकर निकल गया।
तो आखिरकार कौन था वो इंसान जो फरीदी को भी कत्ल करने के लिए आया था? और फरीदी को इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि कोई उसे मार डालना चाहता है? नवाब साहब अपने कमरे में आधी रात गए क्यों मौजूद नहीं थे? क्या नवाब साहब का कोई ताल्लुक उस कातिल से है? जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ गाथा पर।